نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تم وہ بہترین گروہ ہو جو لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ایسے لگتا ہے کہ اس ہر تم میں میں سامنے بیٹھی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں تم. ایسے ہی ہے نا، کسی کو جب تم کہا جائے تو اس کی توجہ بہت بڑھ جاتی ہے. ہم کہہ دیں تو تھوڑی سی فرق ہوتی ہے. میں آپ سب سے کہ ہم سب یہ کرتے ہیں تو آپ میری اس بات کو سنیں گے، لیکن جب میں آپ سے کہوں گی نا تم کو، جیسے میں آپ کہہ دوں تو میں کہوں کہ آصفہ آپ یہ کر لیں، تو پھر آصفہ کو یہ بات اپنے لیے لگے گی. آصفہ سمجھ جائیں گی کہ اس وقت میری جو بات ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت آصفہ کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں امت مسلمہ کو جو پیغام دیا ہے وہ کہا ہے کنتم خیر امتن، تم ہو وہ بہترین امت. اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. یہ بھی نہیں کہا کہ ہو، نکالی گئی کے لفظ میں بھی ایک عجیب بات ہے. ایسے لگتا ہے کہ یو ہیو ٹو. بچہ بھی ماں کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے، شگوفے میں سے پھل بھی نکلتا ہے، قبروں میں سے مردے بھی نکلیں گے، یہ سارا کچھ ہوگا اپنے وقت کے ساتھ. لیکن یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ تم چاہ نہیں تیرے، کوئی تمہیں اتنا احساس نہیں تھا، لیکن ہم نے تمہیں کر دیا. جیسے وہی بات ہے کہ جب اللہ کسی بندے کی بہتری چاہتا ہے نا تو اس سے کوئی کام لے لیتا ہے، اور جب کام لینا ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے کسی کو لگا دیتا ہے، کوئی اس کے پیچھے سے دھکا دیتا ہے اور وہ اس کام میں چل پڑتا ہے. تو کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو معروف کا، اور معروف عرف سے ہے جانی پہچانی چیز، اور دنیا کی سب سے معروف چیز لا الہ الا اللہ ہے. انسان کی فطرت بھی اس کو پہچانتی ہے، انسان کی عقل بھی اس کو پہچانتی ہے، کائنات بول بول کر کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کائنات کی ایک ایک چیز بول کر کہہ رہی ہے کہ اللہ ہے. معروف کا سب سے پہلا اطلاق لا الہ الا اللہ پہ ہوتا ہے. ہماری عقل بھی اس کو پہچانتی ہے کہ اللہ ایک ہے، ہماری فطرت پہچانتی ہے، ہماری جبلت پہچانتی ہے، وحی الہی اس کو پہچانتی ہے، ہماری زندگی کے اتار چڑھاؤ اس کو جانتے ہیں کہ جب اللہ نہ چھوڑے تو بندہ نہیں پکڑ سکتا. اور اللہ ملا امانی علی ما آتیت ولا موتی علی ما منات ولا ینفع زل جدی من کل جد، یہ اللہ کی شان ہے. اور جب اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ نہ دینا چاہے کوئی لے نہیں سکتا. تو معروف تو یہ ہے، اور اس کے بعد ہر نیکی معروف ہے، کل معروف ہے. شراب غیر معروف ہے، تنہون عن المنکر دوسری چیز، تنہون عن المنکر انکار کرے جس کی چیز. سب سے پہلا منکر دنیا کا شرک ہے، پھر کفر ہے، بلکہ اگر آپ کفر کو اوپر کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. اور اس کے علاوہ دوسری طرف لے لیجئے، منکر انکار سے، یعنی مشرک کی بھی فطرت جس چیز کا انکار کرتی ہے وہ شرک ہے، اور کافر کی بھی فطرت جس چیز کا انکار کرتی ہے نا وہ کفر ہے. اس کائنات میں کوئی ایک چیز ہے ہی نہیں جس کا سہارا لے کر کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے، ناممکن ہے. یہ تو ایک اپنی بات ہے. اور اگر کائنات میں گھوم پھر کر دیکھ لیں تو آپ کو اللہ کی ہستی کی نشانیاں ایک ایک چیز میں ملیں گی، کھلتی ملتی دکھتی ملیں گی. تو کیا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت پیارا خطاب دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اس چیز کی دعوت دے دی ہے کہ تم ہو اصل وہ جنہوں نے اب وہ کام کرنا جو انبیاء کرام کرتے تھے. دعوت اللہ کا کام اتنا خوبصورت کام ہے جس کو اللہ کے ہر نبی نے کیا. دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ بائی پروفیشن فلاں ڈاکٹر ہے، بائی پروفیشن فلاں جو ہے وہ مزدور ہے، کہتے ہیں نا پروفیشن. آپ بائی پروفیشنل جو کام پروفیشنلی کر سکتے ہیں وہ دعوت اللہ ہے. اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پائلٹ بننا، آپ میں گھر میں ہیں ہاؤس وائف ہے، कोई रुकावट नहीं है। यानी एक डॉक्टर भी एक प्रोफेशनल दाई हो सकता है और होना चाहिए। एक बच्चे से मैंने एक सफर के दौरान पूछा था कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो सोचा हमारी एडमिन ही का बच्चा है, घर में बचपन से जब से होश संभाली है तो कुरान और इसी तरह की चीजें देखी है, मेरा 11-12 साल का होगा, तो बड़ी सोच में डल के कहता है आधा डॉक्टर और आधा इमाम। मैंने कहा आधा आधा क्यों? तो अगला जुमला सुनिए, कहने लगा कि दीन के साथ दुनिया भी रखनी पड़ती है। तो मुझे पता चल गया ये पाकिस्तानी घर का बच्चा है, एशियंस ने दीन दुनिया रखने का यही एक मैार रखा हुआ है ना। तो फिर मैंने उसको कहा कि बेटा आप पूरे डॉक्टर और पूरे इमाम क्यों नहीं बनेंगे? तो उसकी आंखों में ना एकदम हैरत थी कि ये उस्ताद है, कोई गलत सवाल तो नहीं करेगी। कहते ये कैसे हो सकता है, मतलब ये था कि फिर तो अगर मैं पूरा डॉक्टर बन गया तो मैं फिर इमाम कैसे बनूंगा, और अगर मैं पूरा इमाम बन गया तो मैं कमाऊंगा क्या? तो मैंने उसे कहा कि आप डॉक्टर बनेंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे आप, और फिर उसके बाद आप लोगों को ट्रीट करेंगे, अच्छे अच्छे इलाज करेंगे, लोगों से पैसे ज़्यादा नहीं लेंगे, फिर इतने में अजान का वक्त हो जाएगा तो आप घड़ी देख कर कहेंगे आई हैव टू गो, फिर आप अपनी लैंड क्रूजर निकालेंगे, मर्सिडीज जो गाड़ी अल्लाह आपको देगा, आप उसमें बैठेंगे और आप मस्जिद चले जाएंगे। तो मस्जिद में जाते ही फौरन आप मौज़िन के मिंबर पे जाकर अजान देंगे, फिर थोड़ी देर बाद लोग आएंगे आप उनको नमाज पढ़ाएंगे, जो ही नमाज पढ़ा लेंगे वो कहेंगे ओके जी आई हैव टू गो बैक, फिर आप वापस अपने क्लिनिक आ जाएंगे। तो आप पूरे डॉक्टर भी हो गए, पूरे इमाम भी हो गए। उसको मेरी बात समझ आ गई, लेकिन मुझे जो खुशी हुई उसकी बात से कि इस नस्ल तक कम अज कम आधी इमामत पे तो हमारी नस्ल आ गई है, पीछे ये एहसास भी नहीं था। हमने अपने बच्चों को पिछली पूरी सदी में ये एहसास भी नहीं दिया कि इमामत कितना बड़ा काम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश थी ना कि अल्लाह ने जब कहा कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हम आपको लोगों में इमाम बनाएंगे, तो फौरन कहा वकाल मिन ज़ुर्रियती, हज़रत इब्राहिम को अपनी नस्लों की फिक्र थी। लेकिन ये पिछली सदी जो गुजर गई, लोगों को बस ये कह दिया नमाज रोज़ा और बस वो भी गुजारे का। और इस हफ्ते में कल से लेकर 2 दिन पीछे ले लेना, दो वाकयात ऐसे फर्स्ट हैंड मेरी अपनी आंखों क्या मेरे सामने हुई हैं बातें, कि जिसके बाद अब मुझे यकीन आ गया कि इस वक्त दावत इल्लाह का काम सिर्फ हकीकत में नहीं, ख्वाबों में भी, और सुबह में नहीं शाम में भी, और मक्का में नहीं वेस्ट में भी, और वेस्ट में नहीं मदीना में भी करने की ज़रूरत है। और वाकयात क्या है, एक मुस्लिम फैमिली कोसोवो से मूव हुई हमारे नेबर में, मुस्लिम पता चला फैमिली है, खैर नेबर होने के नाते एक आध दफ़ा उनके साथ हल्की सी बात हुई, तो एक दिन पहले आने से मैं उनके पास गई बैठी। कैन यू बिलीव, इतनी नाइस हॉस्पिटेबल अच्छी सिस्टर स्लीका श्योर, लेकिन कुरान नहीं पता क्या है, घर में एक भी कुरान नहीं है, जायनमाज नहीं है घर में। तो मेरे साथ जो सिस्टर थी वो गवाही दे सकती हैं, बच्चियां थी, एक 10 साल की होगी, 11 की, और एक 8-9 साल की थी, इतनी प्यारी बच्चियां के वो प्यार मोहब्बत का एक कह लीजिए कि मजमुआ। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि सुनाइए बिलीव मी, मैंने उसे कहा किसे पूछे बच्ची नमाज पढ़ती है, बाद में पता चला बच्ची छोड़े बड़े भी नहीं पढ़ते। और वो जो बातें कर रही थी ना, कहती हाउ कैन आई प्रे विद 2 जॉब्स, मैं भी 2 जॉब्स करती हूँ, मेरा हस्बैंड भी 2 जॉब्स करता है। बहरहाल जो भी उस पर हुआ, थोड़ी देर बाद जो हल्की फुल्की की फिर सुनाने लग गई, जैसे हम अपने बड़ों की सुनाते ना, कहती मेरा बाप घर में 3 गाड़ियाँ खड़ी होती थी लेकिन वो पैदल मस्जिद जाता था, अब बाप भी नहीं है माँ भी नहीं है, बैक होम्स पेरेंट दादा दादियाँ नमाज पढ़ते थे पर आप हमारे में कैसे पढ़े? यानी सारी बात को अगर मैं सम अप करूँ ना, एंड अप क्या हुआ कि नमाज का वक्त हो गया, बीच में मगरिब का वक्त है, चाय उसने हमें पिलाई बड़े प्यार से, तो मैंने कहा अब नमाज पढ़नी है, तो मैंने कहा कि इनसे पूछो कि हम नमाज मिलके पढ़ लें। तो जब उसको ऑफर दी ना, तो वो उसके लिए इतनी अनहोनी चीज थी, इतनी अनहोनी, राइट नाउ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड बट माइट बी आफ्टर 2-3 वीक्स आई विल। आप मेरे दिल का अगर सोचे ना, कि अगर वो जैसे गुदा नहीं होता शेक, मेरा दिल ऐसे था, तसव्वुर में नहीं। मैंने कहा 2-2 जॉब्स करके क्या करनी है, वही इश्यूज, बैक होम में घर बनाया 4 मंजिला जिधर रहता ही कोई नहीं है, और मियाँ फैमिली को सपोर्ट करेंगे ये वो, कहने की बात, ये बात तो हो गई। मैंने इतना दर्द महसूस किया, मैंने कहा इसको अल्लाह इधर किसी मकसद से लाया है, वो भी को मेरे स्कूल का ही घर है, नेबर में थी, तो मैंने कहा इसकी बच्चियों को हम स्कूल में ले जाएंगे, आज तक बच्चियां किसी इस्लामी स्कूल में नहीं गई और कोई ये फीलिंग भी नहीं है इसकी। बहरहाल कल रास्ते में थे, जब जब इधर इमिग्रेशन पे लंबी लाइनें होती हैं आपको पता ही है, तो मेरे हस्बैंड के पीछे एक शख्स था, बीएड थी उसकी, मैंने ऐसे हल्का से पीछे देखा, मैं दुआएं सुन रही थी तो मैंने इनकी बातें नहीं सुनी। बाद में मुझे कहने लगे कि ही वॉज टर्किश, और ऐसी ही बातचीत में मैंने उससे पूछा नमाज कहाँ पढ़ते हो क्या, कहता आई डिडंट प्रे। मेरे हस्बैंड अपनी बात उसको बात बढ़ाने के लिए करते हैं ना, तो कहते मैंने उसको कहा कि आई प्रे 5 टाइम इन मस्जिद, कहता है हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ डू यू नो के सलात टाइम हियर नाउ, किसी मुल्क में नए आए हो ट्रेवलिंग में हो तो ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें पता चला कि नमाज का वक्त है। बस ये दो वाक्यात अगर मैं आपके अंदर वो एक दर्द पैदा कर सकूँ ना, आज के दौर में करने का काम दावत है, वल्ला ही मैं रो ना पड़ूं ये दुआ करें। आज भी इस मुल्क में, इस दुनिया में, जिस जगह भी आप बैठकर मेरी बात सुन रहे हैं, सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एमरजेंसी बेसिस पे करने वाला काम, द मोस्टली नीडेड थिंग इज दावत इलल्ला। हम नॉन मुस्लिम्स को देते हैं तो दावत कहते हैं, मुस्लिम्स को कहेंगे तो हम तालीम कह देंगे, कुरान सुन्नत दोनों की जरूरत है। जितना इस वक्त इस्लाम के मुंह पे एक धब्बे और फॉग और एक कह लीजिए कि धुंध छाई हुई है ना, गैर मुस्लिम जितना डरते हैं इस्लाम से, ये भी आप कभी जाके इन गौरों से पूछा तो करें, वो तो आपसे हाथ मिलाते हुए डरेंगे कि हाथ में ही ना कोई मिसाइल पकड़ाओ, बिलीव मी ये मुंह पे तमाचा है हमारे। एक मस्जिद में गोलियां क्या चली, एक माँ ने परसों सुनाया, जुमे की बात है ना, एक दिन पहले की भी सुन ले, हमारी क्लास थी, मैंने उसमें इनकी रिक्वेस्ट पे किया कि ये जो न्यूजीलैंड में हुआ है ये क्या हुआ है, तो वो कहने लगी कि रात के 1:30 बजे हुए थे नॉर्वे में, जबकि न्यूजीलैंड में ये वाक्या हुआ, अभी जुमा आया नहीं था, और जब फिर चंद घंटे बाद इधर सुबह हो गई होगी तो जुमा था। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उस दिन जिस डरते दिल से जुमा पढ़ा है आपको पता, वो एक माँ हमारी स्टूडेंट है, वीकेंड क्लास थी तो उसमें उन्होंने शेयर किया, डॉक्टर थी, कहने लगी मैं आपको अपना वाक्य सुनाती हूँ और छोड़िए, जुमे का दिन था, कहती मेरी कहीं अपॉइंटमेंट थी, तो मेरा बेटा जिसको मैं हमेशा हर वीक अपने हिसाब से तैयार करके जुमे के लिए भेजती हूँ, तो मैं उसको कह के आई हुई थी, उसका एक फोन, फिर दूसरा फोन, फिर तीसरा, कहती आखिर जब उसके बहुत सारे फोन आए ना तो मैं परेशान हो गई कि अल्लाह खैर करे, तो मैंने वो जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट थी मैंने उनसे एक्सक्यूज करके फोन अटेंड किया, तो मुझे कह रहा है कि मामा मैंने जुमा नहीं पढ़ने जाना, वहां गोलियां चलती हैं, और कह रही मैंने उसको कहा बेटा इधर गोलियां नहीं चल रही, वो कहीं चली थी तो जुम्मे पे जा। आप जरा सोचिए ये अल्लाह ताला हम मुसलमानों के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा, हमें क्या गम अपने साथ के, हमारी क्या बीमारी है, ये कोई बीमारी है, ये कोई मेरा ख्वाब है कि मेरा घर इससे बड़ा बन जाए, डूब मरने को दिल करता है मुझे अपनी ख्वाहिशों पे, ये कोई मेरी जिंदगी है रोने को दिल चाहता है, ये मेरा कोई गम है जिसपे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की भी है, ये कोई फिक्र है जिसपे मेरे बाल सफेद हो गए हैं, ये कोई मेरे ख्वाब है जिसको देखने के लिए मैं जी रही हूँ, वल्लाही वल्लाही मैं सख्त बात नहीं करना चाहती, इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ इस बात की सजा काट रहे हैं कि हमने नबियों का वो काम छोड़ दिया जिसके लिए अल्लाह ने कहा कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मुझे दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दीजिए, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ आज सिर्फ वो लोग खुश हैं, उनके अंदर इत्मीनान है, उनकी जिंदगी में सुकून है जो दावत इल्लाह का काम कर रहे हैं, वो किसको कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं डजंट मेक एनी डिफरेंस, जब अल्लाह एक काम को कह दे और साथ ही कब तू मैं नून बिल्ला, तुम खुद भी तो अल्लाह पे ईमान लाते हो, आपके अपने ईमान की इस्लाह और आपके अपने ईमान की बेहतरी के लिए लाजिम है कि आप कुरान पकड़े रहें, और कुरान पढ़ना तो बीच का मंजर है, आज बड़ी बात कहने लगी आप सबसे अल्लाह से डरते हुए कहूँ, कुरान पढ़ना पढ़ाना मकसद नहीं है कि मैं सारी उम्र अब कुरान ही पढ़ती रहूँ, ये कुरान आपको मुझे दावत इल्लाह की तरफ अगर नहीं ले रहा, 6 साल पढ़ने के बाद अगर मैं एक कामयाब और एक एक्टिव दाइया नहीं बनी तो तुफ है मुझ पर, कुरान बराए कुरान नहीं पढ़ना, तर्जमा बराए तर्जमा नहीं पढ़ना, तफसीर बराए तफसीर नहीं है, ग्रामर बराए ग्रामर नहीं है, और हिफ्ज़ बराए हिफ्ज़ नहीं है, ये कोई गोल नहीं है जिंदगी का कि आप पढ़ पढ़ के और अपने ऊपर इल्म के पहाड़ बनते जाएं, ये तरतीब बदली है, आज मैंने चंद चीजें आपको देनी है उसमें एक चीज आएगी, तो सारी बात को पीछे ले आइए, वो काम जो सारे नबियों ने किया, द कॉमन थिंग इन प्रॉफिट्स लाइफ वाज दावत इल्लाह। आप आज भी देखिए कहते हैं लोगों को साथ लेकर चलो दुनिया में इंसानों के लिए ये करो तब्दीली लाओ, सब कहते हैं ना तब्दीली लाओ, इस पूरी दुनिया में ये करो वो करो, कहीं सियासत के नाम पे कभी कुछ राय आमा बदलो, कोई कहता है मीडिया कुछ यूज करो, कहते हैं ना यकीन कीजिए कि लोगों ने आज तक जो कोशिशें की हैं ना, किसी भी तरह से, उसमें कितने फितने आ गए। सियासत के नाम पे कोई किसी को अल्लाह की तरफ ला सका? नहीं ला सका। सबसे आसान और खूबसूरत तरीका, अगर आप राय आमा को बदल सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के दीन ईमान को महफूज कर सकते हैं, पहले तालीम और फिर दावत। एक स्टेप है, कुछ लोगों ने तसव्वुफ और वज़ाइफ का तरीका इख्तियार किया ना, कहते हैं ये बहुत अच्छा है, इसलाह करते हैं अपनी। कितना आसान काम है, एक कोने में बैठिए, पानी का एक कटोरा सामने रख लें, 500 दाने की तस्वीर हो, और पूरी तवज्जो से ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहिए। और तसव्वुर में भी कर लीजिए कि आप मछली के पेट में बैठे हुए हैं और वहां आप ये दुआएं पढ़ रहे हैं। बहुत आसान है। कहीं हो सकता है आपके सामने लाकर को पानी की बोतलें रख दे कि एक भूख हमें भी मार दो। इट्स नॉट अ बिग डील। और आखिर करते करते फिर लोग कहेंगे जी अब मेरे नफ्स का तज़किया हो गया है, अब मैं कुर्ब की राहों पे चल पड़ा हूँ, और अब मैं अल्लाह की ज़ात में नौज़ बिल्ला फ़नाई हो गया हूँ, और अब आखिर में फिर जब वो फ़ौत होंगे लोग आपका उर्स करेंगे, कहेंगे नौज़ बिल्ला शादी हो गई अल्लाह से इनकी, ये खुशी होगी। यानी तसव्वुफ़ की ज़ुबान में उर्स क्या, शादी। जब कोई मरता है तो उसका उर्स क्या मनाते हैं, कहते फ़ना इल्ला हो गया, नौज़ बिल्ला नौज़ बिल्ला। सब अकीदे की खराबियाँ हैं, निकल जाइए। आप पीछे चलिए, ये तो तरीका बहुत आसान था। अब आप और मैं अगर यहाँ सिर्फ सवाब लेने आए हैं तो माजरत है, कल मत आइएगा। सवाब बैठकर आप गरीबों को रोटियाँ खिलाते रहें, प्यासों को पानी पिलाते रहें, असल में जो आप और मैं काम लेकर बैठे हैं वो सवाब नहीं है। वो मिल जाएगा, इंशाल्लाह मिलेगा। हम जिक्र अस्कार करेंगे, हम अल्लाह को याद रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जिसको आपने मैंने अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है, मेरी ज़ात से फ़ायदा कितनों को हो रहा है। देखिए आगाज़ होता है फ़ायदा लेने से। आप तालिब इल्म है ना, जैसे नए नए स्टूडेंट बने सबीलुल जन्ना, आप कुरान लेने बैठे, जिस दिन आप सबीलुल जन्ना की सीढ़ी पर चढ़े, कोई काम नहीं आपने करना सिवाय अपने पढ़ने के। आप के हमारी ड्यूटियां लगा दें, हमें इधर ले जाएं, हम वो भी नहीं कर सकते आप, सॉरी, कच्चे बर्तन हैं अभी आप, आपके अंदर अभी वो सब्र नहीं है, अभी आपको हिकमत नहीं है। उन दिनों में तो बस आप वो कंटेनर बने जिसमें डलता जाए डलता जाए। कुरान तफसीर से एक बार पढ़ ले। अब आप कहते हैं एक बार पढ़ लिया से मुराद ये है कि मेरे 100 में से 100 नंबर आ जाए हर पारे के, ये मतलब नहीं है। मैं आज ऐसे 10 नाम आपको गिना सकती हूँ, पेपरों में उनके नंबर आधे भी नहीं आते होंगे, बट मेरी ज़िंदगी में के फस्त तो बे रब्बी काबा, जो अल्लाह ने एक सहाबी की ज़ुबान से निकाला था, काबा की रब की कसम मैं कामयाब हो गया हूँ, उनकी ज़ात से इतनी खैर फैल रही है। कौन देखे आपके तर्जमे, कौन पढ़े आपके फ़हम? ठीक है हाँ, आप एज अ टीचर बैठेंगे इधर तो फिर आपका फ़हम और आपका कुरान ठीक होना चाहिए, लेकिन दावत इल्लाह में हर एक के लिए ये काम भी नहीं अल्लाह ने किया, और करे जो वो पूरे यकीन से फिर करे। खैर उसको पीछे कीजिए, पूरे नंबर लेने वाले किधर हैं? आप कहते हैं मैंने पूरा सबीलुल जन्ना किया, मेरे 100 में से 100 नंबर, और आधे आधे नंबर से मैं आके आपसे लड़ती थी, और झगड़े ही मेरे ये थे कि आप मेरे से बड़ी ज्यादती करते हैं और मेरी ग्रुप लीडर बड़ी सख्त है फलान नरम है। जाइए आप पूरा सर्टिफिकेट लेके चले जाइए, लेकिन अगर आपके अंदर किबर और तकबर भर गया ना कि मेरे जैसा कौन और दूसरा कौन, तो मेरी नज़रों से आप कामयाब नहीं है, माजरत के साथ। देखिए एक मैं छोटा सा जुमला बोलती हूँ, रूट टू फ्रूट, आप लिखिए अपने पास, रूट टू फ्रूट। रूट क्या होती है? जड़। जब भी कोई बीज जमीन में जाएगा आखिर में उसे क्या निकलना है? फ्रूट। ऐसे ही है ना, जब बीज जमीन में जाए और आखिरी नतीजा ना निकले, तो क्या वो सारी मेहनत कोशिश जो किसान ने माली ने की उसका फायदा होगा? नहीं फायदा होगा। हर चीज़ अपने असल के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल आमालु बिल ख़वातीम, आमाल अपने खात्मों के साथ है, एंड प्रोडक्ट क्या है। चलिए औरतें हैं ना, हम सभी सारा दिन आप किचन में रहीं, आप घर आए मेहमानों को भी सुना रही हैं, सुबह से मैं बैठी नहीं, मियाँ को भी आप रोज़ कहती हैं कि मैं तो सारा दिन करी, किया क्या है? पूछेंगे ना बेगम नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है? आपका घर तो गवाही नहीं दे रहा कि आप सुबह से काम करती रही, सफाई करती रही, घर तो साफ ही नहीं है, और आप कह रही हैं सुबह से खाने पकाती रही, किधर पके हैं? आप कह रही वो मैंने 6 किलो लहसुन छील के रख दिया फ्रिज में और 20 किलो प्याज काट के मैंने फ्रीज कर दिया, भाई आज क्या खाएंगे? वो नहीं, बाजार से ले आइए। कोई नहीं मानेगा आपके खाने को पीने को। रूट टू फ्रूट अपनी जिंदगी का असूल बना है। जो मेहनत आप कर रहे हैं वो फ्रूट में बदल रही है कि नहीं बदल रही? आपका जो इनपुट है उससे इक्वलेंट आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा? अदरवाइज याद रखिए, दीन नहीं फैल रहा। दीन कब फैलेगा? जब हर मदरसा, हर जामिया, जहां भी दुनिया में, माशाल्लाह उम्मुल कुरा, आप रियाज यूनिवर्सिटी, मदीना यूनिवर्सिटी, हम तो इनके सिंबॉलिकली नाम ही ले सकते हैं ना, मौरितानिया में बहुत है, इजिप्ट में बड़ी बड़ी जामे आते हैं, और पाकिस्तान में ही कितने हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला और भी तरक्कियां दे। जब तक हर जगह से इल्म के बीज के बाद तबलीग और मुबल्लिगीन का फल नहीं पैदा हो रहा, तो तरीकाकार ठीक नहीं है, फिर गलत बात है, सब्र कुछ मसला है। क्यों? क्योंकि फल नहीं है। जिस जगह दरख्त होंगे वहां ऑक्सीजन होगी, वहां साया होगा, होगा ना, प्योरिटी होगी ना। जब पढ़ना पढ़ाना इतना आम होगा तो उसके नतीजे में मुआशरे के और इर्द गिर्द के जो जर्म्स हैं, जो बुराइयां, वो कम होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना। दरख्त ना हो तो कार्बन है, धूप है, दरख्त है तो ऑक्सीजन है, साया। आपका मेरा ये बीज जो अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह की किताब की सूरत में आपके मेरे दिल में आया ना, इसका अमली आपकी कामयाबी है। आप बन क्या रहे हैं? आप दाइयां बन रहे हैं। अगर आपकी ज़ात अपने वजूद से, आपका किरदार अपने वजूद से, आपके मामलात अपने घर वालों से, आप अपने रिश्तेदारों के साथ क्या मामला फहमी करते हैं, आप अपने बीवी, बच्चे, शौहर, घर वालों के साथ कैसे हैं, और इसके अलावा फिर बाज़ाबता कुन तुम खैर उम्मत नुखरी जात, जैसे 5 साल डॉक्टर बनने के बाद क्या करना होता है, प्रैक्टिस, 2-3 साल की प्रैक्टिस के बाद फिर सारी जिंदगी पढ़ना है। पढ़ना तो मकसद नहीं था ना डॉक्टर का, पहले 5 साल पढ़ा, फिर 3 साल हाउस जॉब की, फिर कार करा के 10 उसके लग गए साल, तो अब इसके बाद क्या, डॉक्टर। फिर वक्त के साथ साथ जो जो नए नए कोर्सेज आते जाएंगे, हर 2 साल बाद कोई अपग्रेडेड करता रहेगा। तो हमारी सारी बात का खुलासा, अब मैं जिसको सम अप करती हूँ, आपको मुझे इस चीज़ का यकीन आ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे जिस बड़े काम के लिए भेजा है वो दावत है। दावत के निशाने राह ढूंढने की ज़रूरत है, और वो क्या है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकरीबन 1 लाख कुछ नबी पैगंबर, 25 का तो नाम कुरान में है, वो रसूल थे, पैगंबर थे, उनको पीछे कर दीजिए, इन सब का कॉमन काम दावत इलाल्लाह था। पूरी सूरत आराफ से लेकर 30वें पारे तक आपको कई कई सूरतें स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट पे चली ना, इन्नी क्या है, हज़रत नूह ने क्या कहा, इन्नी रसूलुल्लाही अदू इलैक, बुलाता हूँ उसको। तो क्या पता चला कि ये कोई बड़ा ही अच्छा काम होगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक ये काम किया, नबी सल्लम को 23 साल तक मौका मिला, मौका मिलता तो आप लंबी उम्रें भी करते कराते। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने आपको मुझे जिस काम की दावत दी है वो क्या है, इंसानियत के लिए नफ़ामंद बनो। वाम ममा यनफो नासु फयमकुस, दुनिया में देखिए बीमारियां हैं तो उसका इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, परेशानियां हैं उसका भी इलाज है, मुकदमे हैं उसका भी इलाज है। तो बिल्कुल इसी तरह से दुनिया में हक और बातिल की जंग शुरू से थी, डे 1 से। आदम और इबलीस का किस्सा कुरान में 9 दफ़ा है कमोबेश। अल्लाह ने डे 1 पे आदम को बता दिया कि इस दुनिया में तुम्हारा भी और अल्लाह का भी दुश्मन साथ जा रहा है, इख्बितु मिन्हा जमीया। उस दिन से लेकर हक और बातिल की जंग लगी हुई है, और अल्लाह ने इबलीस की दावत पे फंजिर नीला योम योबासून की जो उसकी ख्वाहिश थी पूरी कर दी, कि फसा बनता जा, तू जिसको मर्जी बहका ले, जो मर्जी कर ले। तो क्या पता चला कि सबसे बड़ा काम क्या है, शैतान के प्लान को पीछे करके रहमान का प्लान दुनिया में चले। और अल्लाह का इरादा क्या है कि लोग जन्नत में जाएं, अल्लाह ने एक जन्नत नुमा घर बना दिया, शैतान चाहता है कि उस घर से हटाकर दूसरी तरफ ले जाए। ठीक है, तो पहले है इस्लाहे नफ्स, वो होगी इल्म के साथ, व युज़क्कीहिम व युअल्लिमहुमुल किताब वल हिकमा, 3 दफ़ा कुरान में नबी सल्लम की ये सिफात है, जिसका खुलासा ले लीजिए कि अरबों को जो बद्दू थे, अखलाक की बुराइयों पे जा चुके होंगे, इसी कुरान ने उनकी इस्लाह की। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा ودين الحق ليظهره على الدين كله. تین دفعہ یہ بھی آیت ہے قرآن میں. سب سے پہلے آپ نے میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی فکر کرنی ہے. کو انفسکم. پھر اصلاح نفس. اس کا طریقہ کیا ہے؟ علم. قرآن اس خوبصورت طریقے سے آپ کا تزکیہ اور آپ کی تربیت کرتا ہے, آپ کا مجاہدہ کرتا ہے, آپ کے اندر محنت کی عادت ڈلتی ہے, ریاضت کی عادت ڈلتی ہے, آپ کے اندر وہ صبر پیدا ہو جاتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کے اور خضر کے بیچ میں جو ایک ڈسپیوٹنگ تھنگ تھی, کیا تھی؟ انک لن تستطیع معی صبرا. صبر. یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں, جس کو تفسیر کا قرآن کہتے ہیں, سبیل الجنہ کہہ لیں, تعلیم القرآن کہہ لیں, فہم القرآن کہہ لیں, جس میں آپ اپنے نفس کو مارتے ہیں, سبق یاد کرنا ہے, لکھنا ہے, لکھا نہیں جا رہا, ہاتھ تھک رہے ہیں, کمر ٹوٹ رہی, کرنا ہے. جب آپ یہ کام کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہے. پہلی ہے اصلاح نفس. اس کے لیے تعلیم ہے, علم ہے, اور معذرت کے ساتھ جو آج اس کے بغیر تبلیغ کر رہے ہیں وہ بھی صرف لوگوں کو فضائل سنا رہے ہیں, وہ روایتیں سنا رہے ہیں, وہ اپنی آپ کو فیبریکیٹڈ چیزیں بھی سنائیں گے. سب سے بیسٹ کمبینیشن, انسان پہلے اپنی اصلاح کرے, قرآن کے وہ پانچ حق دینے کی حت البسا کوشش کرے, اس پر ایمان, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس پہ عمل اور ابلاغ. یہ ابلاغ چھوٹی ہے نا, پانچواں حق ہے قرآن کا. اگر آپ ایک بینر دیکھیں تو سب سے پانچواں حق بڑا ہے, جس کے لیے پچھلے چار حق ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ ایز اے اسٹوڈنٹ, طالب علم بیٹھنا چاہیے. اگر آپ کا بچہ 10 سال میٹرک کے لیے جا سکتا ہے تو اس کے 2-4 سال اس کام کے بھی ہونے چاہیے کہ وہ تعلیم لے, جس کے اندر وہ دین کو سیکھے. یہ تو پلانز ہے, آپ کو آگے سناتی رہوں گی, آپ تو حیران ہو جائیں گے سن سن کے کہ اللہ راستے کیا کھل رہے. آج ہماری نسل کیوں بھٹکی؟ آپ صبح 7 بجے ایک بچے کو اسکول بھیجتے, ہفتے میں 5 دن بھیجتے. مثال لے لیتی ہوں, امین دن میں یعنی ایک ہفتے میں 5 دفعہ صبح 7 بجے کے قریب اٹھتا ہے یا اس سے بھی پہلے, اور 2-3 بجے تک آتا ہوگا. 3 بجے. دیکھیے بڑی غور سے سننے کی بات ہے, ایک بچہ جس نے کلاس روم میں آنکھ کھولی, جو وہاں اپنی ماں کے ساتھ قرآن سنتا رہا, پریکٹیکل زندگی میں جب وہ پڑھا تو وہ دیکھ رہا ہے کہ پہلے وہ ایک دو سال ڈے کیئر گیا ہوگا, نرسری, وہ انہوں نے کھلایا ہوگا, گھوما پھی, کھاؤ پیو, بچے موجیں کریں, ٹھیک ہے. اسکول میں آ گیا, 10ویں تک کا مثال لے لیں, 11 سال میں وہ روز صبح یہی کرے گا, اٹھ کے یونیفارم پہنے گا, یہ کرے گا, اور وہاں جائے گا تو وہی ABC, 2+2 اور جو بھی چیزیں سب کو پتا. اگر یہ بچہ 10 سال تک میں صرف اسکول کی تعلیم پوری کرے, اس کو کیا آپ نے سکھا دیا؟ کیمسٹری بڑھی, فزکس بڑھی, جغرافی بڑھی, اردو بڑھی, انگلش بڑھی. میں پریکٹیکل بات کر رہی ہوں نا. اب آپ کہتی نہیں بچے کا دین بھی کچھ چاہیے, ظاہر ہے مسلمان ہے, بڑا ہو رہا ہے, تو پھر 4 سال کی عمر میں اس کو میرا حال ہے کسی قاعدے پہ ڈال دیا ہوگا, اس کو پکڑ کے جی کسی اسکائپ کلاس میں لے جائیں, مدرسے میں لے جائیں, ماشاءاللہ انہوں نے ان کو 1 سال میں نظرہ پڑھا دیا, پورا ہو گیا, ختم. 30واں پارہ اس کی آخری صورتیں شروع کر دی ہوں گی. ذرا سا بچہ بڑا ہوا 6 سال کے قریب, تو ماں کو بھی فکر, آپ کو بھی, کہ نماز سکھائی ہوگی ان کے استادوں نے, کچھ آپ کو دیکھ کے گھر میں سیکھے گا. مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے ایک بچے کو ناظرہ بھی پڑھا دیا الحمدللہ, آپ نے اس کو نماز بھی پوری سکھا دی, 10 سال پہ آپ نے اس کو نماز کا پابند بھی کر دیا. اس سارے ٹائم ریشو کو دیکھ لیجئے. اصل میں ایک عام ماں ہو نا, جو خود قرآن نہ پڑھی ہو, وہ کہے گی شکر ہے, میں بخشی گئی, میرا مردہ حلال, چلو جی وہ میرا بچہ قرآن بھی پڑھ گیا, بسم اللہ کی رسم بھی کر لیں گے, امین کی آمین بھی ہو جائے گی, مولوی صاحب کو جوڑا بھی دے دیں گے. وٹ نیکسٹ؟ کچھ بھی نہیں. ایک ماں نے کہا کہ میرے بچے کی قرآن کی تکمیل ہوئی, بہت اس کو اچھی طرح سے ہم نے سیلیبریٹ کیا, سارے فیملی کو بلایا آگے, بڑی واہ واہ. اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں, میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ قرآن ویسے جیسے روز کھول کے کبھی پڑھتا تھا, پڑھتا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ بیٹا آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا ماما پڑھ تو لیے, ڈن فنش, قرآن پڑھ لی, اب دوبارہ کیوں پڑھوں؟ ہمارا ایجنڈا ہی اتنا ہے. معذرت کے ساتھ آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, کہ ہمارے انڈو پاک کلچر میں دین کا کیا کوٹا اتنا ہی نہیں, اور ادھر ماشاءاللہ میٹرک کے بعد پھر ایف اے بی اے, تو ادھر دیکھیے 40 آورز اے ویک, چلے آپ اس کی چھٹیاں کاٹ کوٹ کے 37.5 آور ایک ویک کے, 4 ویک کے کتنے بنے, نہیں سمجھے. ہمارا امین کیسے دائی بن جائے بڑا ہو کے؟ دس از رانگ وے. ہم جس سسٹم میں ڈال دیے گئے ہیں نا, جب تک ہم مسلمان سچے دائی دین نہیں بنیں گے, ہماری نسلوں کی اصلاح ہوگی نہیں. आप बुलाते हैं बच्चियों की, आप ये स्कूल है इधर चलो जी, हम शाम की क्लासेस कर लेते हैं, 10 बच्चियां आएंगी क्यों? मामा सुबह 7 बजे से उठ के तो 4 बजे तक स्कूल थी, अब मैं 6 बजे नूरुल कुरान पे क्यों? वो सच है, इंसान है, और जब के कल अगले दिन फिर उसने जाना है, आप 10 बच्चियों को बुला लेंगे। और सुबह स्कूलों में देखिए, हम अपने बच्चों को जब तक दुनिया की तालीम के साथ दीन को साथ नहीं रखें, और अल्लाह ने ये काम लेना है, अल्लाह ने वो सबाब बना दी है कि ये बच्चियां साथ एफए करेंगी, साथ सबीलुल जन्ना करेंगी इंशाल्लाह, और ये बीए करेंगी और नूरुल नूर साथ करेंगी, और मास्टर्स के साथ इल्म नाफे होगा, ये होगा, ये मैं हूं ना रहूं ये काम होगा, ये मुझे यकीन है, मेरे अल्लाह के इतने वादे पूरे हो चुके हैं, ये काम शुरू हो चुका है। वजह, अदरवाइज देर इज नो बिग चेंज इन द सोसाइटी। आप एक बच्चे को इतने साल पढ़ पढ़ा के बाद में फिर खड़ा कर देते हैं इधर, और इधर खड़ा करे तो उधर धक्के, उधर धक्के तो इधर धक्के। इस वक्त हमारी नस्लें वेरी डिस्ट्रैक्टेड, और ये उनकी जिनकी माओ ने कुरान शुरू कर दी है, दो लोग बड़े खुश हैं आज, एक तो शुरू में कहा ना जो पूरे के पूरे कुल इन सलाती व नुसुकी व महया या व माती, जो पूरे अल्लाह के रंग में रंग चुके, कि अल्लाह मैं अपने मुताबिक नहीं चल रही, अपनी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स के साथ दीन का काम करना इज नॉट अ बिग डील। मैं घर फारिग थी, टाइम नहीं गुजर रहा था, खाना भी पका लिया, आ गई इधर आपके पास, ओ आई हैव टू गो गो बैक क्योंकि मैंने अपने मियाँ के लिए गर्म रोटी बनानी है, मैं चली जाऊंगी, ओ आई हैव टू पिक माई किड्स, इट्स वेरी इजी, और मोस्टली पीपल आर डूइंग दिस थिंग। एक ये तरीका है, अपने लाइफस्टाइल और अपनी जिंदगी के असूलों के मुताबिक दीन को अमेंड करें, ये भी बड़ी बात है जिसको अल्लाह दे दे। बट दूसरा, अल्लाह तू भेज टाइम टेबल, किधर जाना है, किधर रहना है, क्या करना है, कब करना है, प्लानर क्या है, टाइमर क्या है, किस किनारे पे जाना है, किस बॉर्डर को क्रॉस करना है, कब सोना है, कब जागना है, तू दे, हम बीच में अपना कर लेंगे। असल ये है सिबगत अल्लाह ही मन अहसन मिन अल्लाह ही सिबगत, दिस इज द क्लाइमैक्स। और ये था नबियों का तरीका जिंदगी, इसमें सुकून, इसमें खुशी, इसमें है असल में जिंदगी का मकसद। तो दावत की पहले तो अहमियत समझे ना हम सारे। आप कहते तबलीगी जमात तबलीग करती, एक और अल दावा वाले दावा करते होंगे, कुछ को हमने सोचा ये पढ़ते पढ़ाते हैं, नूरुल कुरान वाले कुरान पढ़ा रहे हैं, चले हम अपना ही नाम ले लेते हैं, दिस इज नॉट द वे। जो एंड रिजल्ट अगर पूरी उम्मत का इकट्ठा नहीं निकल रहा, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जब तक आपका मेरा हर बच्चा जो हमारे घर में पैदा हो, वो हमारा नहीं हुआ, वो उम्मत मुस्लिमा का एक फर्द भी बन गया, और हर बच्चा नबी के दीन का दाइना बने, आपके मेरे ये स्कूल बना के बैठने का भी कोई ज्यादा फायदा नहीं। हमने गलती क्या की, तालीम को दावत में नहीं ढलने दिया। मैं आपको अपने ऊपर लेके समझा देती हूँ, मेरे लिए मेरा ये ड्रीम हो सकता है कि मैं 2-4 साल तक सबसे छुप जाऊँ, दिस इज माई ड्रीम, और मैं अपनी सलाह करूँ, हर एक को जरूरत है ना, मैं हिफ्स करूँ, मसलन मैंने हिफ्स नहीं किया हुआ, सबके सामने बता रही हूँ, अब मेरा दिल करता है मैं हिफ्स करूँ, तो मैं सब स्टेशन से छुट्टी ले लूँ, और सारे स्टेशन जो छोटे मोटे अल्लाह ने दिए हुए, मैं उनसे कहूँ कि मुझे 2-3 साल ना बुलाना, तो मैं जरा छुप के हिफ्स कर लूँ, या मैं जिप चली जाऊँ, मक्का चली जाऊँ, और रिसोर्सेज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ जाना चाहते हैं आप चले, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी खुदगर्जी होगी। अगर मेरी जिंदगी में कुछ मेरे से अल्लाह काम नई जगह पे ले ले, तो मैं क्यों नहीं करूँ, अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया और मैं इसको पीछे डाल दूँ, और उसके साथ सब कुछ वैसे मिल जाता। दावत इल्लाह, अपनी जिंदगी के गम दूर करने हैं, आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल अच्छे करने हैं, आपने अपने शोहरों को दीन पे और जमाना है, और 10 जो गम अपने ख्वाब है, वल्ला ही मैं अल्लाह पे नजरे लगा के आपको कह रही हूँ, दावत इल्लाह, दिस इज द ओनली वे। आपकी जिंदगी का सुकून, आपकी जद्दी पुश्ती बीमारियां कट जाएंगी इसमें, आपके बच्चों के गम ठंडे हो जाएंगे अगर आप इस रास्ते में फोकस हो जाएंगे। वजह क्या है कि उदु इला सबील रब्बी का, ये लफ्ज ऐसे लगता है कि क्या कोई रोमांटिक लफ्ज होगा, मैं अपने रब की तरफ बुलाता हूँ, मुझे किसी के नाम से नहीं, मुझे किसी के गिरोह से नहीं, मुझे किसी के मसलक से नहीं, मुझे किसी के फिरके से नहीं, इला रब्बी सयाहदी, अल्लाह तेरे लिए निकले, वइज़ गदउत मिन अहलिका, सुबह सुबह अल्लाह का नबी निकला था ना तेरे घर के लिए। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी का एक आज के बाद, आज डेट लिख ले, अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को, गोद के बच्चों की लोरियां, बड़े जवान बच्चों के ख्वाब, आपके शोहरों के साथ आपके प्लान्स, और आपके भाई बहनों के साथ जो लेन देन के झगड़े, उसमें सबसे बड़ा लफ्ज़ उदु इला रब्बी। दावत अल्लाह की तरफ, और ये चीज जब आती है तो फिर जिंदगी खूबसूरत होती है। और आप देखिए, एक लफ्ज है दावत, दूसरा है दाई, तीसरा है मदऊ, और चौथा है मधु अलै। ये चार टर्म्स ले लें, फिर आपको सिर्फ आज चंद नाम लिखा दूंगी, बाकी चीजें तो हम रोज करते ही रहेंगे। ये पूरा दावा कोर्स चल रहा है।